दास्तान नैयर की पांचवी कड़ी। ये सुनने में आता है कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो एक खास तरह के माहौल में काम करने के आदी होते हैं। कुछ जगह उनकी बड़ी फेवरेट होती हैं जहां वो अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका कौन सा स्टूडियो फेवरेट था?
कुछ नहीं, कोई फेवरेट चीज नहीं। फेवरेट वाज मनी, पैसा लिया है और जो अपने रिकॉर्ड काम करो, यह बस नथिंग एल्स।
लेकिन कई लोग वर्कहोलिक हो जाते हैं और रात दिन सिर्फ अपने काम में ही डूबे रहते हैं। पैसा कमाना ही जिंदगी का मकसद हो जाता है।
वो तो यानी कारीगरों का काम है, लेबरर्स का जुट जुट हो जाना, जो मालिक की देने से तो फिर टाइम कहाँ लगता है। आवर्ती की बात आई, देने वाला देता तो फिर छप्पड़ फाड़ के इल्हाम भी देता है।
लेकिन ये सब हमारी एक प्रोफेशनल लाइफ है, एक पर्सनल लाइफ है और दोनों को समय देना बड़ा जरूरी होता है।
यूजुअली शाम की रिकॉर्डिंग अवॉइड करता था, 7 बजे के बाद मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता था। कभी मजबूरी हुई तो 15% शाम को रिकॉर्डिंग की प्रोड्यूसर के लिए।
एक दिन में मैक्सिमम कितने गानों की रिकॉर्डिंग की?
200 ऊपर कभी नहीं करता था, 100 या 100 बस।
मतलब 4 घंटे में?
3 घंटे में, कभी कभी 2.5 घंटे में। मैंने बोला था म्यूजिशियन उठ कर क्लैप मारता था।
लेकिन पैकअप होने के पहले गाना सुनते थे ना आप?
रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद अपना गाना मैं सुनता था, 2-3 दफा सुनता था। मुझ पे ना थी
आर्टिस्ट को माइक्रोफोन की प्लेसिंग वगैरह के बारे में भी बतलाया करते थे यार।
जो मंजे हुए आर्टिस्ट है उनको पता माइक पे कैसा गाना है। रफी साहब या गीता दत्त या शमशाद या आशा को कौन समझाएगा कि भी माइक के इस तरफ उस तरफ हो जाओ।
म्यूजिक अरेंजर कौन थे आपके?
वो थे मिस्टर सेबेस्टियन। चूंकि इंग्लिश के बैकग्राउंड जो ऑब्लिगाटो बजते थे वो मैं नहीं जानता था। ये जो फॉरेन ऑर्केस्ट्रेशन ऑब्लिगाटो बजते थे वो सब मिस्टर सेबेस्टियन करते थे। जैसे वो सितार, सरंगी, सुरूद, उसका कुछ नहीं इससे उनको पता था क्या होता है।
सेबेस्टियन साहब के अलावा और कौन था?
जी स्कूल वो म्यूजिकेटर बन गया क्योंकि सुनते सुनते देखते वो सिर्फ मेरे साथ तबला प्लेयर था।
कुछ गाने आपके ऐसे हैं जो बड़े मेलोडियस हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन फिल्मों में नहीं, उनके लिए जगह ही नहीं थी या सिचुएशन नहीं थी या जो भी है। जैसे वो प्राण जाए पर वचन न जाए का जिसे मैंने भी गाना लिखा, चैन से हमको कभी आपने,
वो फिल्म नहीं था,
वो भी नहीं है,
बेवकूफ लोग हैं।
या हीरा मोती का वो गाना जो मैंने लिखा हुआ है कि तुम खुद को देखते हो, जिसका आपने जिक्र किया, फिल्म में नहीं था वो। इसका मलाल आपको कभी हुआ?
ये मलाल होता है जब ये कि यार अच्छे गाने बीच से निकल गए, ये होता है।
उसी की वजह से लोग जाते हैं कि भाई वो गाना उस फिल्म में है तो क्यों ना देख के आए, और वहाँ वो गाना ही मिलता है तो उसे भी अफसोस होता है।
मेरे तो कई गाने हैं ऐसे, और मेरे क्या नाम है, फिर ठेस लगी दिल को, फिर याद ने तड़पाया,
बाद में ऐड किया गया था। मैंने कश्मीरी कली देखे, उसमें है गाना?
नहीं नहीं, वो निकाल दिया गया, हफ्ता भर रहा होगा फिर निकाल दिया।
मैंने उसे देखा,
पहले वीक में देखी होगी
जी, तो वो था फिल्म में मुझे याद है, मगर ये 2-3 गाने जिनका जिक्र किया मैंने वो फिल्मों में नहीं थे।
कई गाने मेरे ऐसे हैं कि रखे नहीं गए फिल्म में।
तो कभी आपने इसका गिला नहीं किया प्रोड्यूसर से?
नहीं, गिला क्या करेगा, वो शिकायत होती थी यार ये अब क्या इनके हाथ में हमने पैसे ले लिए हैं, अभी शिकायत क्या बोली, आपको आपकी उजरत मिल गई, हम सारा गाने निकाल दे, निकाल दो।
नहीं सर, संगीत देना तो आपका प्रोफेशन था, लेकिन संगीत के अलावा और किन चीजों में आपकी बहुत ज्यादा रुचि थी?
साथ तबीयत खराब रहती थी मुझे, बड़ी तकलीफ थी कॉन्स्टिपेशन की, और मैं हमेशा दवाइयां खाता रहता था। एक मरहूम संगीतकार थे फड़के साहब और आशा भाई, ये दोनों मिलके मेरे को ले गए डॉक्टर फाटक साहब के पास 1973 में। बड़े संत फकीर आदमी थे, 10 रुपए फीस लेते तो दवाई लिख के दे देते, तो मुझे उनकी दवाई से बड़ा फायदा हुआ। मैं एक दिन जाके उनके पांव पड़ गया, छू लिए, लिटरली पांव पड़ गया, साहब मुझे होम्योपैथी सिखाइए। तो कहते तुम्हारे पास टाइम किधर है, तुम काली शवर लेट में आता है, मेरे से दवाई लेता चला जाता है, तुम्हारे पास टाइम किधर है? मैंने कहा साहब मैं सब छोड़कर मुझे सिखा दीजिए। 6 महीने जनाब मैं उनको रोता रहा, पांव पड़ता रहा, आखिर एक दिन कहने लगे ये सॉल लाइट आई टीच यू, 3 दफा हफ्ते में आओ, इतने बजे आओ। तो मैं जनाब बराबर टाइम से वहाँ पहुँच जाऊँ। 3 महीना मैं उनसे होम्योपैथी सीखा। उसके बाद आज जो हिसाब मैं करता हूँ होम्योपैथी, अगर वो जिंदा होते तो इतना पीटते, ये तुमको किसने बताया ऐसा करना, बिकॉज आई प्रैक्टिस कम्बिनेशन रेमेडीज। I don't give single remedy. वो ज्यादा से ज्यादा alternate करते थे, one and two. मैं 20-20, 18-18, 30-30 remedies combine करके देता हूँ. And मेरे ख्याल से आते हैं, ये खिदमत है, इसमें किससे उजरत नहीं लेता. वो भी मैंने बंद कर दी है, कोई 1.5 वर्ष हो गया, अब मैं होम्योपैथी करता नहीं, कोई इलाज नहीं करता.
लेकिन आपका फिलोसफी की तरफ भी रुझान है.
वो तो साहब कबीर साहब की वाणी है कि दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए और घर की चक्की कोई ना पूजे जाका पीसा खाए. जब ये इल्म आ गया दिमाग में तो उसके बाद ये सब चलता ही था. औरत भी साहब स्पिरिचुअलिटी का कारण बनती है. मेरी जिंदगी में कई औरतें ऐसी आई हैं जिन्होंने मुझको ये रास्ते बताए हैं कि नैया साहब कहाँ डूबे हो, यही कहीं तुम मार्फत की तरफ लगे होते पता नहीं क्या बन जाते. तो आज मेरी ग्रैंड डॉटर की उम्र ये राजू बिटिया बैठी हुई है, तो आप देखिए कि 8 वर्ष में मेरे को ऐसे सबक दिए हैं कि आई एम ए डिफरेंट मैन टुडे.
थकन कैसी झुकन कैसी चल अपनी धुन में दीवाने. थकन कैसी झुकन कैसी चल अपनी धुन में दीवाने.
राजू को तो खास आके दर जमा है. हाँ, क्या करेंगे आप? वो तो कहती है कि 100 बरस में ना तुम्हारे जैसा संगीतकार हुआ ना आगे होगा. ऐसी आशिका क्या बोलूंगी इनको? मैं उनको दीवाने बुलाता हूँ. अरे बड़े बड़े अच्छे काम करने वाली दुनिया मौजूद है. बस मैं खास तौर पे फैन रोशन साहब का. इतनी सुरीली रूह थी वो, बता नहीं सकते.
रोशन साहब की संगीत की क्या बात आपको?
अरे जज्बात का भरा हुआ आदमी था, आत्मा से सुर निकलते दिल से. वो संगीतकार था.
उनका संगीतबद्ध किया कौन सा गीत आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
अरे साहब बड़े मन रे तू काहे रे धीर धीरे जादू उस आदमी का दिखता है. क्या बनाया उसने. और वैसे उनकी पहली अपनी फिल्म देखी कि ख्यालों में कभी इस तरह आया नहीं करते. और सुन बेरी बरम कछु बोल रहे तो क्या होगा राजकुमारी का गाया रूह से भरे हुए गाना.
रोशन साहब तो खुद भी एक जमाने में रेडियो में थे.
हाँ साहब, दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो से पियानो बजाते थे और म्यूजिक कंपोजर थे वहाँ के.
उनसे आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई?
दिल्ली में हुई, क्योंकि मैं दिल्ली में 2-3 प्रोग्राम में गाया, मेरे साथ पियानो बजाए वो. फिर हम जरा 4-5 साल लेट पहुंचे, ये पहले म्यूजिक डायरेक्टर बन गए, सुपर हिट गाने दिए. मुलाकात कई दफ़ा मेरी रोशन साहब से हुई. कभी इसी पार्टी में रोशन साहब मिल गए तो मैं उनकी हमेशा तारीफ कर रहा.
नहीं साहब, आपने रोशन साहब की बात की, उनके संगीत की बात की, और अच्छे संगीत को सुनने की प्यास तो हमेशा बनी रहनी चाहिए. लेकिन अब जो मेरा सवाल है वो जरा संगीत से हट के है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस उम्र में भी आप नौजवानों को भी मात करते हैं, और एक खास बात आपकी पर्सनालिटी में जो मैंने देखी है वो ये कि आपका एक तो हैट जो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका है, और आप भी देव साहब की तरह कॉलर बंद करते हैं।
वो भी अपने गर्दन को बुढ़ापा छुपाते हैं, मैं भी छुपाता हूँ। सच्चाई ये है, लटकती दिखती है, इस वजह ऊपर कर लेते हैं।
और ये कैप भी आपके पहले से पहनते रहे?
नहीं नहीं, कैप तो देखिए गंजा नहीं, देखिए गंजा हो गया हूँ, तो इसको जरा मैंने कहा जरा रुबाब भी बनता, स्टाइल भी बनता है, तो पहन लिया।
और किस चीज में आपका गहरा रुझान है?
वो स्पिरिचुअल, अब्बा पास के तबेले ग्रंथ मेरे पास बहुत है, कबीर साहब के ऐसा ग्रंथ है कि जो किसी के पास मिलेगा नहीं, मेरे पास है।
स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत बिलीव है,
बहुत जबरदस्त, वरना है कि आपके मेरे अंदर साहब के अंदर बोल क्या रहा है?
नहीं सर, भगवान आपके लिए क्या है?
जिसको मैंने देखा नहीं उससे मोहब्बत कैसी? खुदा तो आपके अंदर है, भगवान तो आपके अंदर है। अगर आपसे मोहब्बत नहीं तो भगवान से कैसे करूंगा? मोहब्बत तो किसी चीज को देखोगे तो करोगे ना।
और प्यार, मोहब्बत, रोमांस आपके संगीत की पहचान है, आखिर इसके पीछे इंस्पिरेशन कौन सा है?
वो नारी है, बस उधर से निकला सारा संगीत।
जवानियां ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियां ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। सभी हंसी सभी जवान कहाँ पे दिल को हारिए, सभी है दिल की महिमा किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए। जवानी आए मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। दीवाने हम थे चाह के तो बेकरार वलिए, के दूर की निगाह के गुनाहगार हो लिए, गुनाहगार हो लिए। जवानियां ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए।
विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। संगीतकार ओपी नैयर खुद बयां कर रहे हैं दास्ताने नैयर।
अच्छा नहीं, सब जिन फिल्मों में आपने संगीत दिया उनको कभी सिनेमा हॉल में फैमिली के साथ जाकर के या दोस्तों के साथ जाकर के या फिर अकेले ही बैठकर आप देखते थे और अपना संगीत सुनते थे?
कभी नहीं, ये एक और अनोखी बात है। हम पिक्चर अपने गाने पिक्चर देखते थे जिस वक्त बैकग्राउंड म्यूजिक होता था, उस वक्त देखिए सुनाओ दिखाओ यार, पिक्चर अपने कभी देखते नहीं थे।
आपके बच्चे आपका संगीत सुनते थे?
मोस्ट ऑफ म्यूजिकल वुमन। मेरे घर में कोई म्यूजिकल किसी किसको पता है पिछली म्यूजिक क्या चीज होती है?
यानी नहीं, ये सब आपकी क्रिएटिविटी से, आपके संगीत सृजन से आपके घर वालों को कोई मतलब नहीं था?
कुछ मतलब नहीं था।
एक बात और है, आपके घर में कभी फिल्मी माहौल नहीं रहा?
नहीं, कभी नहीं। कोई फिल्म का आदमी आना जाना नहीं, किसी को एंटरटेन नहीं किया।
नहीं, आपने कभी इसके लिए फोर्स के बच्चों को कि नहीं फिल्मी दुनिया ठीक नहीं है, या उनके अंदर ही ये बात नहीं?
नहीं साहब, मैंने कभी कोच नहीं किया। देखो, माँ बच्चे पालती है तो उसके ऊपर सारा दारोमदार है, तो अपने बच्चों को उसने बहुत अच्छी तरह पाला है, बड़ा किया है।
घूमने का शौक रहा?
वो भी पहाड़ों पर, और कहीं समंदर के किनारे मेरे को पसंद नहीं है, अशांत है। पहाड़ों में शांति, ऊंचे ऊंचे पहाड़, वहाँ पर सूर्य डूबता देखिए, बहुत शांति है पहाड़ों में, शांत खड़े ये बेचैन।
तो नहीं सब अभी ऐसा भी हुआ है कि आप किसी हिल स्टेशन में घूमने गए हैं और वहाँ आपने कोई धुन भी बनाई हो?
एक धुन हमने मसूरी में बनाई थी, वो थी यही वो जगह है, यही वो फिजा है, यही पर कभी आप हमसे मिले थे। अभी क्या है कि मैं प्रोग्राम बाहर गया हूँ, कई जगह पर तो दोस्त लोग थे, चीफ गेस्ट बुलाया गया, लेना देना कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास के टिकट, 5-स्टार होटल स्टे। मुझे जाने का शौक नहीं कि राजू हमारी जो बिटिया बैठी है इनको शौक है फॉरेन कंट्री देखने का, पासपोर्ट बना के मेरे सर पे चढ़ जाती है कि हमको दिखाओ। तो कभी दुबई जाना पड़े या कभी मस्कत गए या कभी बाहर जाना पड़े तो उसके लिए जाता हूँ, अदरवाइज कोई इंटरेस्ट नहीं।
तो प्रोग्राम में कैसा रिस्पांस हुआ?
पूछे नहीं। अरे साहब, अरब बच्चे बच्चियाँ लाके अरब में मुखड़े लिखे हुए हमारे, और ऐसा हाथ लेके चूहा आंखों को लगाती है, अल्लाह खालिक बोलती है। अरे हमका अल्लाह खालिक है, बहुत बड़े शुरू ऐसा बोलती है, मरहबा मरहबा। पूछे बाहर जाके पता लगता है कि हम कहाँ बैठे हुए।
हम कौन
अच्छा नहीं सर, कभी आपका मन करता है कि आप लाहौर दोबारा जाएं और वो जगह देखें जहां आपका बचपन बीता, जहां आपने अपनी जिंदगी के कई साल गुजारे।
नहीं सर, पता नहीं, हार्ट देख के मर जाएगा मैं। अरे यार, जिस शहर में बेटा कमल साहब हम पैदा हुए, जिस मिट्टी में रहे, बेस्ट ऑफ द पंजाब टेकन अवे, लाहौर से शुरू होता था पैरिस ऑफ इंडिया। अरे हर चीज क्लीन, सड़कें ऐसी क्लीन कि आप ऐसा करें तो मट्टी नहीं लगे आपके हाथ को, ऐसा क्लीन सिटी।
नहीं ऐसा, वो शहर की सड़कों पर आप कई बार चले होंगे, कई बार उसकी गलियों से गुजरे होंगे, वहाँ के बाजारों की रौनक देखी होगी।
अरे साहब, आधार का गली क्या जगह, वहाँ के बंगाली मिठाई, एक बंगाली था बनाता था, वो आज तक कहीं नहीं आपको मिलेगी खाने में। और वहाँ की वो पीठी की पूरी जो कि यूपी का हलवाई बनाता था, वो कहीं वो मिलेगी नहीं बाद में,
पर वो स्वाद आपको अभी तक याद है।
हाँ साहब याद है, क्यों नहीं याद रहेंगे।
बचपन के दोस्तों के बारे में, कॉलेज के दोस्तों के बारे में याद है।
बस देखो, दोस्त हमारी जिंदगी में कितना काम आया, ऐसा भाटिया। बाकी दोस्त अब देखिए, को मैं तुम्हारे स्कूल में याद में है, वो उस वक्त था, इस क्लास में था, अब उनकी शक्लें देखिए, मेरी शक्ल देखिए, कि हुरिये बगैर बदल गए।
नहीं सर, आपको एस्ट्रोलॉजी में भी बड़ा इंटरेस्ट है।
देखिए साहब, ये एस्ट्रोलॉजी बड़ी खतरनाक चीज है, इसको मैं अपने सब दोस्तों को बोलता हूँ, मत मानिए इसको, लेकिन मैं नहीं निकल सकता खुद, क्योंकि मैं 18 वर्ष के अंदर इसके अंदर घुसा हूँ, मैं नहीं निकल सकता इसमें से। लेकिन क्या है कि ज्योतिषी इसको, ये अगर आपको बोल दिया जाए आपका अच्छा होने वाला है, तो आप इस उम्मीद में रहेंगे, दो साल इस उम्मीद में रहेंगे, फिर उसके बाद गाली देंगे ज्योतिषी। फिर अगर आपको बोल दिया जाए कि आपका बुरा होने वाला, आज से दुखी हो गया, खैर मेरा पता नहीं क्या होने वाला, इस पे इत्काद करना गलत है।
अच्छा नहीं सर, ये बताइए कि इस उम्र में आप अपने आप को कैसे चुस्त दुरुस्त रखते हैं, किस तरह का खान पान है आपका?
साहब मैं मोनो फूड खाता हूँ, दोपहर को मैं दो बॉइल्ड एग्स लेता हूँ, ऑमलेट नहीं कभी खाता, अंडा फ्राई नहीं खाता, कुछ दो बॉइल्ड, उसमें तेल नहीं रहता है, और दो फुलके खाता हूँ छोटे छोटे। मोनो फूड, अगर आज सब्जी खाई है तो कल दाल खाएगा, कल दाल खाई है तो परसों सब्जी खाएगा, एक सब्जी या एक दाल के साथ रोटी खाता हूँ, और रात को मैं सिर्फ फ्रूट खाता हूँ, फ्रूट भी का वो चार चीकू हमारी राजू लाती है, वो काट के खिला देती है, कोई खाना बना नहीं खाता।
नहीं सर, इस पूरी बातचीत के दौरान राजू का जिक्र कई बार आया, और राजू इस रिकॉर्डिंग के दौरान मौजूद भी रही, लगता है आप राजू की बात बहुत मानते हैं।
ये मेरी अम्मा है, ये ना होती तो मुझे 15 वर्ष हो गए घर से निकले हुए, तो ये ऐसी देखभाल करती है कि शायद जिसने मुझे पैदा किया उसने भी नहीं किया, ना मेरी बीवी बच्चों ने मेरा ऐसा ख्याल किया है जो राजू करते हैं।
नहीं ये सब अभी भी आपने जिक्र किया कि 15 वर्ष पहले आपने घर छोड़ दिया, क्या वजह है इसके पीछे?
इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आर एक्सपेंसिव कमोडिटीज। तो सेल्फ रिस्पेक्ट हमको बहुत अपनी प्यारी है, कोई छोटी सी बात से घर छोड़ के निकल गया।
कोई फिल्म भी छोड़ी आपने इस बात पे?
ना ना ना, फिल्म कैसे छोड़ेंगे, जहाँ माल मिलता है, ये तो लूटा लूटते, तू यहाँ से जान के छुटकारा हुआ, भाई ले जाओ, ले जाओ हमको, छोड़ो अब आजाद है।
तेरा कोई साथ ना दे तो खुद से प्रीत जोड़ ले, बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले, यह पूरा
दास्तान नैयर में संगीतकार ओपी नैयर जी ने हमें बताया अपनी रुचियों के बारे में, अपने खान पान के बारे में। उन्होंने जिक्र किया उस गीत का जिसकी धुन नैयर साहब ने मसूरी में तैयार की थी। नैयर जी ने अपने स्वभाव की कुछ विशेषताओं से हमें अवगत कराया। अब आगे की कहानी। जिंदगी में अगर हम कुछ पाते हैं, हमारी जो उपलब्धियां होती हैं, अचीवमेंट्स होते हैं, उन पर हमें जहां नाज होता है, वहीं अगर जिंदगी में हम कभी कोई चीज खोते हैं तो उस पर अफसोस भी होता है।
नो कॉम्प्लेक्सेस, नो फ्रस्ट्रेशन एंड नो रिग्रेट्स, ये मेरी पॉलिसी रही है। हम वो ना कि फिर तेरे शहर में लुटने को चला आया हूं, वो तो जिंदगी ऐसी है कि जो जो आदमी मार खाता है
जो संगीत दिया है वो हमेशा जवां रहेगा। तो जवां संगीत देने वाले उपनैयर साहब से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज की नौजवान पीढ़ी को जो संगीत पसंद है, या ये कहें कि आज के दौर का जो संगीत है उसके बारे में आपकी क्या राय है।
कमल साहब, ये वक्त वक्त और जमाने की टेम्परामेंट है कि गर्दिश लेना, जमाना बदलता रहता है। आज जो संगीत चलता है, ये देखिए मैं बड़ा हकीकत बताने लगा, तीन तस्वीर, एक तस्वीर तो कोई हाफ से ज्यादा वासी साहब ने लिखी, दो तस्वीरों में कमर के लाला बादी और नूर देवासी साहब थे। खैर, मैंने एकदम रियलाइज किया जो मैं बनाता हूँ वो आज चले जा रहे, जो आज चलता है वो मैं बना नहीं सकता। तो व्हाट इज विजडम टू विड्रॉ ग्रेसफुली, वरना जो आज जो चल रहा है वो चल ही रहा है, क्यों आज की पब्लिक वो पसंद करती है तभी तो चल रहा है। आपका कहना या मेरा कहना या वासी साहब का या हमारी राजू का वो नहीं है, वो जो चल रहा है वो सत्य है, पब्लिक आज यही चाहती है।
नैयर भाई, लेकिन आपकी बात को काटते हुए आपसे एक बात इस शेयर के साथ कहूंगा कि बदलती रुत का असर है तमाम लहजों पर, सुनाई देती है फिर भी तेरी सजा मुझको।
ये तो क्या है, हकीकत चाहने वाले जो हैं, जो कि रिच सोल्स के आदमी हैं, वो रिच ही बातें करते हैं। आज जमाना डिटोरेट हो रहा है, आप टीवी लगाइए, रिक्स मिक्स देखिए, या जो भी लड़कियां देखिए, वल्गर है। तो ये चल रहा है आज, ना इस पर गवर्नमेंट नजर करती है, ना टीवी वाले नजर करते हैं कि बच्चे ये देखते हैं, उम्र कम सन के।
लेकिन इसकी वजह आप क्या मानते हैं, वो क्यों चल रहा है ज्यादा, और वो गाने वही जो जमाने में मशहूर हुए, या आपके गाने या और दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों के गाने जो थे, वो उसी शक्ल में लोगों को कबूल तो है, लेकिन फिर भी उसको एक दूसरे शक्ल में, एक दूसरे रूप में क्यों देखना चाहते हैं।
एक हिसाब ये तो कमर्शियल वर्ल्ड है, व्हाट सक्सीड्स इज ट्रू, व्हाट डज नॉट सक्सीड इज अनट्रू, कमर्शियल वर्ल्ड की बातें हैं।
नहीं सब, इसमें कोई शक नहीं कि एक कलाकार को जनता की तरफ से, अपने चाहने वालों की तरफ से जो प्यार, जो सम्मान मिलता है, वो उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ पुरस्कार, सम्मान एक कलाकार के लिए बड़े मायने रखते हैं। वो फिर आप जैसे फिल्मकारों के लिए फिल्म इंडस्ट्री का कोई सम्मान हो, या फिर शासन की तरफ से दिया जाने वाला कोई पुरस्कार हो।
हमें अवार्ड लेके 13 साल पहले मध्य प्रदेश से लोग आए कि जी इसका नाम है लता मंगेशकर अवार्ड, ये लीजिए आप, 1 लाख का कैश है। हालांकि मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी, मैंने उनसे कहा कि देखिए लता भाई को एक तो मैंने गवाया नहीं, ठीक है, नंबर दो वो अवार्ड जो है हमेशा मरे हुए आदमी के नाम रखा जाता है, लता भाई जिंदा है, और तीसरी एक क्रूनर का अवार्ड है, गायिका का अवार्ड आप मुझे दे रहे हैं, ये मेरी बड़ी इंसल्ट, कोई मुझे शंकर जयकिशन अवार्ड दे, यशी रामचंद्र अवार्ड दे, रोशन अवार्ड दे, तो मैं बड़े प्राइड से उसको सर पे चढ़ा के दूंगा, एक गायिका का अवार्ड मैं कैसे दूंगा। साहब वो तो कहने लगे कि जी आप तो लाख छोड़ रहे हैं तो यहाँ पर तो गवर्नमेंट के लोग 10,000 रुपये छोड़ते थे क्या, दे दी भी नीडिंग मनी मोर देन माई सेल्फ, तो उनको पेश कर दीजिए। मैंने बता तो जिगरा चाहिए साहब, व्हाट इज अ टाइटल यू टेल मी, टाइटल भी क्या चीज़ है, अवार्ड भी क्या चीज़ है, माई नेम इटसेल्फ इज अ टाइटल एंड माई वर्क इज रिवार्ड व्हिच इज अप्रिशिएटेड टू मी।
आपके हसीन रुख पे आज चल गया तो मेरा क्या कसूर है, आप के हसीन रुख से आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आप बेनगाह ने कहा तो कुछ
सन 1966 गायक मोहम्मद रफी, गीतकार अनजान।
खुली लटों के जाम खिला खिला ये रूप है, खुली लटों के जाम खिला खिला ये रूप है, घटा
फिल्म नया दौर के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड आपको दिया गया, और बाद में आपकी एक और फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए के गीत के लिए आशा का नाम पुरस्कार के लिए चुना गया था।
वो लेने नहीं गई क्योंकि नहीं का अवार्ड ताजा ताजा जख्म था और कुछ
नहीं। आपको क्या लगता है कि ये आज के जो गाने हैं या आज के जो संगीत है क्या इतने दिनों ठहर सकेगा जितना?
ये तो देखो जी जनरेशन के ऊपर डिपेंड करता है वासी साहब, ये तो क्या आगे पब्लिक होने वाली है वो मैं नहीं जान सकता, लेकिन इतना मैंने ज़रूर सुना है लोगों से, क्योंकि मैं तो सुनता नहीं, कि ये जितने संगीत आते हैं 3 महीने से ऊपर ठहरते नहीं।
3 हफ्ते, अगर 3 हफ्ते कोई गाना चल जाए तो फिल्म मतलब हिट मानी जाती है, और दो हफ्ते तो टीवी पर ही नजर आता, अगर तीसरा हफ्ता उसने ले लिया तो यकीनन वो गाना हिट है। आज ये मेयार हो गया है।
मैंने तो सुना 3 महीने तक कम से कम चलता गाना।
3 हफ्ते हो गया।
नहीं, सब कैसे शुरुआत होती है इस उम्र में? आपकी सुबह की दिन की शुरुआत कैसे होती है?
सुबह उठते ही फिक्र होती है कि भाई ये बाथरूम जाऊं, बस उसके लिए चाय पीता हूँ, 1.5 सिगरेट पीता हूँ, रात को कुछ लैक्सेटिव लिया होता है तो फिर आसान होके आके बैठ जाता हूँ। फिर आके नहाने धोने का सामान राजू मेरा निकाल देती है, कुर्ता लुंगी पहनता हूँ मैं घर में, बाहर निकलता हूँ तो ये शो ऑफ जो है निकलने करता हूँ मैं, और फिर दोपहर पड़ जाती है, थोड़े अपना ग्रंथ पढ़ता हूँ घंटा भर। लेकिन ग्रंथ पढ़ते हुए दिमाग जो है ठहरता नहीं, भागता है, सुबह वक्त इधर भागता है।
आप भी तो भागते फिरे हैं, सार्वजनिक जीवन से क्यों दूर चले गए?
दूर चला नहीं गया, दूर कर दिया गया, क्योंकि जो हाथ चलता मैं बना ही नहीं सकता।
लेकिन क्या आपका दिल नहीं चाहता कि आप दोबारा कुछ काम करें? अच्छा,
अभी तो अहमद वासी साहब खुदा गवाह है कि ओपन एयर संगीतकार को मरे हुए बहुत टाइम हो गया, अब तो नैयर साहब जिंदा है।
फनकार तो अमर होता है,
फन जिंदा रहता है, इसमें कोई शक नहीं,
उसके साथ ही फनकार है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने कुछ बहुत गैर फिल्मी काम भी बहुत अच्छा किया है, कुछ वजने
कई गैर तस्वीरों के कैसेट बनाया, अशोक खोसला का एक कैसेट बनाया
जी, रूना लैला का भी,
रूना लैला का बनाया, पीना जमसानी का बनाया।
तो क्या आप समझते हैं कि आज जो गैर फिल्मी जो संगीत है वो उस चीज को कंपनसेट कर सकेगा जो मेलोडी हमारी गुम होती जा रही है?
मैंने आपसे पहले भी आशीष साहब अर्ज की है कि पब्लिक टेस्ट ही गिरता चला जा रहा है, तो जो 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 पब्लिक गिर रही है बनाने वाले भी वही उनको देंगे भाई ये लोग।
लेकिन ये सब जहां तक फिल्म म्यूजिक की बात है तो आपका जो स्टाइल है वो सबसे डिफरेंट रहा, आपका अपना एक अलग ही स्टाइल रहा।
हाँ, ये सच सही बात है, मैं इस इंडस्ट्री में रहा हूँ जैसे मैंने चाहा, ना कि जैसे इंडस्ट्री ने चाहा। आई हैव लिव्ड माय लाइफ एज आई डिजायर्ड। किस दुनिया
से निराला जादूगर मत वाला हूँ, इस दुनिया से निराला हूँ मैं, जादूगर मत वाला हूँ। मेरे गीत में वो जादू है, पाँव मेरे रुक जाएंगे, मेरे गीत में वो जादू है, पाँव मेरे रुक जाएंगे। छिप छिप हमको
सन 1988, आवाजें गीता दत्त और आशा भोसले की, गीतकार जानिसार अख्तर।
विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। संगीतकार ओपी नैयर खुद बयां कर रहे हैं दास्तानी नैयर।
नैयर साहब, ये बताइए कि संगीत से आज भी आप किसी न किसी रूप में जुड़े हैं?
नहीं नहीं, तोबा कीजिए, तोबा तोबा शायद की तोबा का फिर किसको ख्याल, छोड़ दीजिए, वो छोड़ दिया सब चीजें, उसके अंदर हुई नहीं। अब मैं
लेकिन अगर आपको इस तरह का कोई ऑफर दिया जाए या कोई प्रोड्यूसर है या कोई कंपनी आपसे रुजू करे कि हम दोबारा आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो आप करेंगे?
बिल्कुल नहीं करूंगा।
क्यों, उसकी वजह?
नहीं, मेरे को काम ही नहीं करना है अभी, वो रूठ गई।
नहीं सर, आपने बहुत ही लाजवाब संगीत दिया है, और अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको किन संगीतकारों का संगीत लाजवाब लगता रहा है, किन की धुनें बहुत पसंद आती हैं, तो आप किन के नाम लेंगे?
मदन साहब है, और खुदा आपका भला करे, एसटी बर्मन साहब है, श्री रामचंद्र साहब है, ये मेरे फेवरेट कंपोजर है।
श्री रामचंद्र साहब का स्टाइल जो है वो भी अपने आप में एक बड़ा अलग तरह का।
क्या बात है, मोहब्बत की ना हो जिसने वो जालिम प्यार क्या जाने, तलत महमूद साहब का गाया हुआ गाना है, कहाँ पर वो एंड के अंदर वायलेंस कहाँ लाते हैं, गौर फरमाइए।
वही बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बर्मनदा की संगीत की और श्री रामचंद्र साहब की संगीत की कौन सी बात आपको बहुत पसंद आती है?
क्योंकि बात क्या, जो संगीत तो वो चीज है जो कान को अच्छी लगे, वो संगीत हर एक आदमी का अपना स्टाइल है। मुझे एक तस्वीर थी शारदा, श्री रामचंद्र साहब का म्यूजिक था, बहुत अच्छे गाने थे
वो, चांद जहां हो जाए।
नहीं है सर, क्रिएटिव लेवल पर कभी किसी के काम से आपको ऐसा लगा कि ऐसा म्यूजिक मैं दे पाता, या उसके काम ने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया?
नहीं साहब, मुझे सिर्फ एक तस्वीर, जब कभी संगीतकार नहीं था, बरसात राज कपूर की, जब मैंने शंकर जयकिशन का गाना सुना, जिया बेकरार है, लता भाई गाई है, क्या गाई है, आज तक मुझे जिंदगी में उसका ये गाना, मैं जहां भी जाता हूँ हमेशा उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि नैयर साहब अपनी पसंद का गीत सुनाएंगे, तो मैं लता भाई का ये गाना बजाता हूँ जिया बेकरार। तो आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप बुरा ना माने तो ये गाना सुनवाइएगा।
फिल्म बरसात सन 1949, संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी।
मोहम्मद रफी आवाज खींचते थे, बांधते थे तो पता लगता था कुछ सिंगर गा रहा है, इल्हामी आवाज गा रहे हैं।
और रफी साहब ने तो आपके गीत क्या खूब गाए हैं, क्या कहने होंगे?
नहीं, बताया तो फौरन गुनगुना नहीं लेते थे, सीखना पड़ता था। हाँ, ये आसान काम नहीं था, नैयर का गाना सांस खींचता मैंने पहले अर्ज की, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, गाने में फिर तबीयत साफ होती है।
तो कभी ऐसा हुआ नैयर साहब के रफी साहब गा रहे हैं और आपको उनका गाना पसंद नहीं आया, और आपने कहा कि नहीं यूं?
वो होमवर्क करके आते थे और मैं होमवर्क करके जाता था, इसमें मैंने कोई दखल अंदाजी नहीं, स्ट्रेट बात है। कोई भी मेरा आर्टिस्ट, गीता दत्त, शमशाद ना, जब सोच के चले गए उसकी ड्यूटेशन हो चुकी है, तो फिर उसको बदली किस बात, जैसा तस्वर किया वैसा रिजल्ट आता था। हाँ, यही इसी से कमल साहब, होमवर्क की तैयारी बड़ी जरूरी चीज है कंपोजर के लिए, इसलिए एक टेक में गाना करता था।
मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम।
मन की वीणा के
नया अंदाज 1956 आवाजें किशोर कुमार और शमशाद बेगम की, गीतकार जानिसार अख्तर। सब जिंदगी में आपके लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान सबसे जरूरी चीज क्या है?
साहब, मुझे जिंदगी भर दरकार रही औरत की मोहब्बत की, और मुझे खूब मिली। ये ऐसी चीज मालिक की बख्शिश है कि 78 वर्ष का आदमी तो मेरी राजू है, शी इज ओल्डर टू माय ग्रेट ग्रेट ग्रैंडडॉटर। वो अच्छा कपड़ा पहनती है तो मैं उसको बोलता बहुत अच्छा। ये श्रृंगार बना ही औरत के लिए, आदमी के लिए क्या बनेगा, क्या करेगा, कितने में सूट पहन ले, कुछ भी कर, हीरो बन जाए, पर्सनैलिटी बन जाए। हम तो औरत के पुजारी पैदा हुए, औरत के पुजारी हैं, और मौत भी किसी औरत की गोद में ही होगी, इतना पक्का गारंटी है।
वो मजाज का शेर मुझे याद आ रहा है, मौत भी इसलिए गवारा है, मौत आता नहीं है आती।
क्या बात है, बस सब ये शेर लिखूंगा मैं आपसे। हाँ साहब,
हर बला से।
सर, ये बताइए कि इंडियन स्क्रीन की कौन सी एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री आपको बहुत पसंद है?
सर, हम तो गुलाम थे कि आर्टिस्ट का उसका नाम था मधुबाला, और मैं एक कंपोजर हूँ जिसने ज्यादा से ज्यादा पिक्चर उनके साथ किए, 6 ढाके के मनमन, हावड़ा ब्रिज, चाली नोट, दो उस्ताद, फागुन फागुन और एक मिस्टर एंड मिसेस 55।
यहाँ उनकी याद में कौन सा गाना बजा आपकी पसंद का?
उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है के रंगीन रातों की कदास्ता।
मिसेस 55 1955 गीता दत्त मोहम्मद रफी गीतकार मजनू सुल्तानपुरी।
उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है ये रंगीन रातों की एक दास्तां है।
उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है
रंगीन रातों की एक दास्ता है।
जाने माने संगीतकार ओपी नैयर से कमल शर्मा, अहमद वसीम और यूनुस खान की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे दिलीप कुलकर्णी। प्रस्तुति सहयोग दिया परिणीता नाइक और चंद्रशेखर भूयान ने। दास्ताने नैयर की इस कड़ी को संयोजित और संपादित किया राकेश जोशी ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने।